अगर कोई व्यक्ति भगवान से ये कहे कि हे प्रभु, आप मुझे सिर्फ दुख दें, सुख का लेश मात्र भी मुझे ना दें, तो ऐसी प्रार्थना सुनने में कुछ अटपटी सी लगती है ना? क्योंकि ऐसी प्रार्थना कोई कर ही नहीं सकता। हर व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता ही इसलिए है क्योंकि उसे सुख चाहिए। अगर उसे ये पता चले कि भगवान से दुख मांगेंगे या दुख मांगना होगा, तो कोई भी व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़े ना। लेकिन वो लोग, वो भक्त जो भगवान का एक बार आस्वादन प्राप्त करते हैं, उनका माधुर्य, उनके नाम का आस्वादन, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीलाओं का आस्वादन, और उसमें जब वो डूबने लगते हैं और आनंद की हिलोरे उनके हृदय में उठने लगती हैं, तब वो कहते हैं, प्रभु मुझ पर इतनी विपदाएं आई तभी आप मिले, ये विपदाएं हमेशा आती रहें ताकि आप कभी ना जाएं। और ऐसा ही कुछ कह रही हैं हमारी प्यारी कुंती महारानी, जो कि भगवान की सुंदर तरीके से स्तुति कर रही हैं। और हम अपना विशेष कार्यक्रम भी कुंती देवी की इन स्तुतियों पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक और बहुत सुंदर स्तुति कर रही हैं, विविधा संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् सद्यम पुनर्भव दर्शनम जन्मैश्वर्य अश्रुत श्रीभिरे धमान मदह पुमान नैवार्हत भी धातुम वय त्वाम किंचन गोचरम। अर्थात, हे जगन्नाथ, हमारा सारी अवस्थाओं में बस मुसीबत और मुसीबतों से ही सामना हो, इस मुसीबत से हम आपका दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि आपका दर्शन भव का रोग दूर कर देता है। और कह रही हैं कि सतकुल में जन्म, संपद, विद्या और सौभाग्य के गर्व से जो मत व्यक्ति लोग हैं, वो आपको कंगालों के भगवान बोलते हुए कभी भी सोच ही नहीं पाते। वो आपको कंगालों का भगवान बोलकर आपके बारे में कभी भी सोचने के लिए नहीं बैठते। बहुत बड़ी बात कह रही हैं कुंती जी। भगवान जो कि भक्तों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, भक्तों के प्रति वात्सल्य से भरपूर हैं, है ना? तो भगवान का जो वात्सल्य है, उस गुण को अनुभव करके कुंती महारानी कह रही हैं कि प्रभु मुझ पर सदा सर्वदा दुख टूटते रहे। क्योंकि जो भगवत भक्त चूड़ामणि गण है ना, वो विपदा हो या संपदा हो, है ना, मुसीबत हो या सुख हो, दोनों ही स्थिति में समान रहते हैं और भगवान के चरणों में मन रखते हुए हर कदम पर परमानंद का आस्वादन करते हैं। जागतिक संपद सुख की छलना हो या फिर जागतिक विपद और दुख की विभीषिका हो, भक्त के हृदय को कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाता, किंतु विपदा में उनका अधिक आग्रह होता है। क्यों? क्योंकि भगवान को ना विपद भंजन भी कहते हैं, यानी भगवान जो है विपदा सुनते ही, विपदा अगर किसी पर आई, मुसीबत आई, दुख टूटे, तो भगवान जो है उस दुख का निवारण करने के लिए आ पहुंचते हैं। अगर विपदा ही नहीं आई, तब फिर उनको विपद भंजन के रूप में हम पा नहीं सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते। तो विपदा में ही उनकी कृपा का पूर्ण प्रकाश होता है। और कुंती देवी पर क्या विपदाएं नहीं आई, बोलिए आप, कितनी विपदाएं आई, उनके पति चल बसे, उनका राज्य उनके हाथ से चला गया, और भीम को बचपन में ही दुर्योधन ने मारना चाहा, उनकी बहू द्रौपदी के साथ बुरा आचरण किया गया, उनके राज्य को छीन लिया गया, चालाकी से युधिष्ठिर महाराज हैं, उनको द्युत क्रीड़ा में हरा दिया गया, महाभारत का युद्ध हुआ, कितने सारी मुसीबतें आई उन पर, लाक्षागृह में उनको षड्यंत्र के साथ भेजा गया और उनको जलाकर मारने की कोशिश की गई। तो विपदा विपदा ही आती रही, और अंततः जो है अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था, उसने उत्तरा के गर्भ पर आक्रमण किया ताकि सर्वस्व नाश हो जाए, पांडवों का मूल नाश हो जाए, तो भगवान ने वहां भी उनकी रक्षा की। तो हर कदम पर बार बार भगवान ने जो है कुंती महारानी और उनके परिवार की रक्षा की। इसीलिए अब वो ये महसूस कर रही हैं कि ये जो विपदा है ना, ये जो मुसीबत है ना, वो हमारा परम बंधु है, परम बंधु। दुनिया भगवान के चरणों में जाती है कि हे प्रभु, हमारी मुसीबतों से हमें छुटकारा दिला दो, पर यहाँ कुंती जी कह रही हैं कि प्रभु, विपदा के निवारण की मैं आशा नहीं करती हूँ, विपदा ही बार बार हर कदम पर मुझे मिले। क्यों? क्योंकि इसी से मैं दृढ़ रूप से आपके श्री चरणों का आश्रय कर पाऊंगी, जीवन में जितनी बार विपदा आई प्रभु, उतनी बार हमें आपके दर्शन मिले। क्यों? क्योंकि आप तो विपद भंजन हैं। अपने चरणाश्रित व्यक्ति की विपदाओं को आपसे देखा ही नहीं जाता। इसलिए प्रभु, आप अपने भक्तों को उनके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए स्वयं आकर उपस्थित हो जाते हो, तो इन दुखों के कारण ही हमें बार बार आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है, है ना? कह रहे हैं कि कितने ही प्रभु योगींद्र मुनीन्द्र गण हैं, वो भव दर्शन निवृत्ति करने के लिए कि जैसे ही आपके दर्शन होंगे तो ये जो भव का ये जो आना जाना है, ये भव रोग है, इससे निवृत्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो वो बहुत समय तक, अनेक अनेक वर्षों तक आपकी तपस्या करते हैं और आपके दर्शन लाभ की चेष्टा करते हैं। परंतु देखिए ना प्रभु, मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है। मैं तो बस मुसीबत में पड़ी और बिना किसी साधन भजन के आपके दर्शन को प्राप्त कर पाई। इसलिए इस विपदा से बड़ा मेरा बंधु भला कौन हो सकता है। कितनी बड़ी बात कह रही है कुंती महारानी, जिस पर चर्चा करेंगे हम। समर्पण में हम बहुत सुंदर श्लोक ले रहे हैं, जहाँ पर कुंती महारानी बहुत सुंदर तरीके से बता रही हैं कि विपदा जो है वो कितना बड़ा कह लीजिए सौभाग्य है किसी पर, है ना? दुखों की अनुभूति से ही ईश्वर के साक्षात्कार के लिए रास्ते निकलते हैं, है ना? उनको जानने के लिए दुनिया प्रयास करती है। वरना अगर दुख ना मिले, आदमी सुखों में लिप्त बैठा रहे, तो भगवान का नाम सुनकर वो बस हंसेगा, कहेगा अरे भगवान मुझे क्या सुखी करेंगे, देखो मैं तो ऑलरेडी बहुत सुखी हूँ, है ना? तो इसीलिए ये बात जानती हैं कुंती जी, इसीलिए उन्होंने कहा मुझ पर मुसीबतें आए। और आगे वो कह रही हैं कि प्रभु, सत्कुल में जन्म, संपद, विद्या और सौभाग्य, अगर किसी के पास ये सब हो, यानी अच्छे कुल में उसने जन्म लिया हो, उसके पास बहुत पैसा हो और विद्या भी हो, यानी ज्ञान भी हो, और साथ में सौभाग्यशाली हो, जिस काम में हाथ डालता हो उसी में उसे सफलता मिल जाए, है ना? तो ऐसा व्यक्ति क्या भगवान को कभी याद करेगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना घमंड आ जाएगा कि वो सोचेगा अरे ये भगवान तो कंगालों के भगवान है, हम तो अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या जरूरत है इन्हें याद करने की, ऐसा वो सोचेगा। तो इसीलिए कह रही है कि प्रभु, ये जो संपत्ति है ना, ये महाशत्रु है, महाशत्रु। क्योंकि जिसके पास बहुत संपत्ति होती है ना, वो उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि आपकी बात उसे याद नहीं रहती, आपको वो भूल जाता है। सत्कुल में जन्म हो, या राज्य आदि का ऐश्वर्य हो, या बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, या बहुत पढ़ा लिखा हो, असीम सौभाग्य के अभिमान में आपकी बात किसी के मन में नहीं रह पाती। हाँ, आप तो कंगालों के धन है प्रभु, कंगालों के। अभिमानी लोग आपको कहाँ पाएंगे? तो कहती हैं देखिए कुंती जी, कि जो हमारे बच्चे हैं ना, हमारे पांचों पांडव, यदि इनके पास संपत्ति रहती तब फिर दुर्योधन आदि की तरह आपकी बात आपको ये भूल जाते, पूरी तरह से आपको भूल जाते प्रभु। क्योंकि दुर्योधन का हाल इतना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास संपत्ति थी खूब सारी, खूब मित्र थे उनके, वो तकरीबन राजा के समान ही सबसे व्यवहार करते थे, आने वाले समय के राजा वही बनने वाले थे, उन्हीं की चलती थी अपने पिता पर भी, तो एक तरीके से वही सब कुछ थे, राजा भी वही थे। तो इस मदांधता में, इस अभिमान में सामने भगवान को देखकर भी वो उनकी तरफ नहीं मुड़े। भगवान को देख रहे हैं लेकिन मुड़े नहीं, भगवान को अपना विश्व रूप दिखाना पड़ा, अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ा। क्योंकि जब भगवान वहां आए संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना इन्हें बंदी बना लिया जाए, फिर तो जो पांडव हैं वो अपने आप हार जाएंगे। तो भगवान को बंदी बनाने के लिए चल दिया दुर्योधन, लेकिन भगवान ने अपना जो रूप दिखाया उससे वो भयभीत हो गया। परंतु तब भी ये समझ नहीं आई बात कि ये ईश्वर हैं, इनकी बात पर मुझे अमल करना चाहिए, इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। और तो और विदुर जी ने उन्हें सही सलाह दी तो भी उन्होंने अनसुनी कर दी। उल्टा सही सलाह देने वाले विदुर जी को दासी पुत्र कह के घर से बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रभु, आप तो जगत गुरु हैं, जगत गुरु, है ना? भगवान क्या है, जगत को शिक्षा देते हैं। कैसे शिक्षा देते हैं? दुखों को देकर भी शिक्षा दी जाती है। हाँ, और जैसे महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर जी ने पाशा क्रीड़ा खेली तो वहाँ युधिष्ठिर महाराज ने सबको शिक्षा दी कि देखो अगर इस तरह से पाशा क्रीड़ा, जुआ, द्युत क्रीड़ा अगर कोई खेलेगा तो उसके मति पर जो है आघात होगा, उसका विवेक कार्य नहीं करेगा, उसके जीवन के सारे सुख के रास्ते बंद हो जाएंगे, उसे दर दर भटकना पड़ेगा। तो भगवान अपने ही भक्तों के द्वारा जो है शिक्षा प्रसारित करते हैं, स्वयं अपने आचरण के द्वारा भी लोक शिक्षा प्रसारित करते हैं। तो भगवान जगत के गुरु हैं। और क्या कहा कि जैसे दृष्टिहीन जो जीव है ना, हा? उनके आंखों को खोल देना ही, उनके आंखों को रोशनी देना ही गुरु का कार्य है। दृष्टिहीन क्या मतलब? दृष्टिहीन जो आध्यात्मिक पथ की तरफ ना देखता हो, ऐसा। इसीलिए कह रही हैं कुंती जी कि आपने विपदा रूपी काजल दे करके अभिमान की अंधता हमारी दूर कर दी और आपने शरणागतों की, हम शरणागतों की नैनों में रोशनी भर दी और अपने चरण के दर्शन से हमें कृतार्थ कर दिया और हम भी जो है भगवान की इस भक्त वत्सलता को याद रखें और याद रखें कि जब भगवान के कोई शरणागति ले लेता है तो भगवान सदा सर्वदा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उस पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती और इसी विश्वास के साथ हम अपनी भक्ति करते रहें। इसी शुभकामना के साथ अब आपसे इजाजत चाहती है प्रेमधारा। नमस्कार।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिरानुदा सेवा अभिलाष करे नरुतम दास सेवा अभिलाष करे नरुतम दास कृष्ण प्राण मोरा।
अक्सर मैं सोचती हूँ कि दुनिया में इतना कुछ है, इतना कुछ जिसका आकर्षण व्यक्ति को भगवान की तरफ मुड़ने नहीं देता। आकर्षण घर से ही शुरू हो जाता है। इस दुनिया में इतनी वैचित्र्य, इतना एंटरटेनमेंट, इतना मनोरंजन और इतने सारे मित्र और इतना कुछ है कि व्यक्ति एक पल का समय अपने आप से ये पूछने के लिए नहीं पाता है कि जिनको मैं देख रहा हूँ या जिनमें मैं फंसा हुआ हूँ, ये क्या मुझे उच्च गति देंगे, क्या होगा इनसे और क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, है ना? लेकिन फिर भी जो भक्त हैं भगवान के चरणाश्रित तो हो गए भगवत और महत कृपा से, हाँ, वो भी तो इसी जगत में रहते हैं, वो भी तो इसी जगत में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो दुनिया की ये समस्त प्रबल आकर्षण उनको अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाते? उनका मन क्यों नहीं करता लोगों से बातें करें, यहां वहां जाएं, गप्पे हाकें? उनका मन क्यों एकदम विरक्त हो जाता है? हाँ, क्यों वो सिर्फ भगवान में आसक्त रहते हैं? या फिर भगवान की आसक्ति का आकर्षण दुनिया के आकर्षणों को तुच्छ कर देता है? शायद यही बात है। और भगवान के और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गुणों पर प्रकाश डाल रहा है हमारा आज का श्लोक, जिसे कुंती महारानी जी भगवान की स्तुति करते समय कह रही हैं। आइए कुछ एक श्लोकों पर हम भी चर्चा करते हैं। ये श्लोक है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मत्रारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः मन्ये त्वाम काल मीशा नमनाधीन धनं विभुम समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्विधः कलिः। अर्थात भक्तों के सर्वस्व, चरणाश्रित जनों के मायानाशक आत्माराम, प्राकृत वस्तु में आसक्ति रहित और मुक्तिदाता प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे श्री कृष्ण, आप हृदय के अंदर और बाहर के जगत के समस्त विषयों के ही नियंत्रक हैं। आपका आदि और अंत नहीं, आप समस्त देशों और समस्त काल में आप ही विराजित हैं। प्राकृत जीवों में समस्त विषयों को लेकर जो तत्व निरूपण के लिए विभिन्न मत द्वैध उपस्थित होते हैं या मतभेद उपस्थित होते हैं, आप उन समस्त विषयों में समभाव ही विराजित रहते हैं। यानी आप किसी का पक्ष नहीं लेते, किसी को विपक्ष की तरह नहीं देखते। तो बहुत सुंदर बात कह रही हैं कुंती महारानी जी। भगवान के ऐश्वर्यों पर हम निगाह डाल रहे हैं कुंती महारानी जी की नजर से, है ना। वो बहुत परम भक्त हैं, है? ऐसी भक्त जिन्होंने दुखों के लिए प्रार्थना की। इतिहास में ऐसे भक्त बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो कहते हैं कि हमें दुखों में डुबो देना, बहुत कम पाए जाते हैं। तो जो भगवान की कृपा के भिखारी हैं, वो सपने में भी कुछ और नहीं चाहते। भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के बाद सब कुछ भी, सब कुछ, जो कुछ कभी अच्छा लगता था, वो सब हेय नजर आने लगता है। और यहाँ तक कि जो मुसीबतें हैं, दुख हैं, उनको वो परम आग्रह के साथ ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से लेते हैं, हाथ फैला करके मुसीबतें, दुखों को बटोरने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुख ही भगवान के करीब लाते हैं, क्योंकि दुख ही व्यक्ति को दीन करते हैं। दुख से ही व्यक्ति का अभिमान चूर चूर होता है और वो नतमस्तक हो जाता है भगवान के श्री चरणों में। तो वे ही प्रकृत पक्ष में भगवान को जान पाते हैं। भगवान कृष्ण क्या हैं, ये वही जान सकते हैं। तो कुंती देवी बोल रही हैं, हे अकिंचन वित्त, अकिंचन वित्त, आहा, ऐसा मधुर संबोधन कभी भी किसी के भी मुख से सुना नहीं जाता। हा? जिनके लिए भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, उन्हीं को कहते हैं अकिंचन। यानी वो किसी चीज को नहीं चाहते भगवान के अलावा, सिर्फ भगवान भगवान भगवान। तो अकिंचनों के लिए अन्य वित्त नहीं है, वो अन्य संपत्ति की तरफ निगाह नहीं डालते, लेकिन भगवान ही उनकी संपत्ति है। भगवान उनकी संपत्ति है, तो उनका वित्त क्या है? अकिंचन का वित्त कृष्ण, कृष्ण रूपी वित्त से वो शून्य नहीं है, है ना। कितना बड़ा धन है उनके पास, भगवत धन है उनके पास। अगर दुनिया के लोगों की तरफ देखें, जिनके पास धन ही धन है, दुनिया का धन है, रुपये हैं, नोट हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, वो भगवान रूपी धन की तरफ कभी भी दृष्टि नहीं डालेंगे, कभी भी उनका चित्त इस वित्त की तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसे ही अगर भगवान जिस तरह से अकिंचन के वित्त हैं, वैसे ही अकिंचन भी भगवान कृष्ण के वित्त हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अरे कंगाल के अलावा कोई भी मुझे नहीं पुकारता। कंगाल, कंगाल कौन? क्या कंगाल सिर्फ वही जिसके पास पैसे नहीं है? क्या कुंती जी के पास पैसे नहीं है? वो तो इस समय जो है बहुत बड़े राज्य की, तकरीबन पूरे विश्व की महारानी हो गई, क्योंकि उनका बेटा बहुत बड़ा राजा हो गया था। तो जिस समय ये प्रार्थना वो कर रही हैं, उस समय तो वो कंगाल नहीं थी। हा? लेकिन कंगाल का मतलब क्या? यहाँ कंगाल का मतलब है जो अपने को अकिंचन समझे, कि ये जो सब कुछ आया ये कृष्ण कृपा से आया, मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। अगर मुझे दो में से एक को चुनना पड़े तो मैं भगवान को चुनूंगा। अगर भगवान कहे कि ये सब ले लो और मुझे छोड़ दो, तो भगवान मैं वो सब छोड़ दूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। ये व्यक्ति है कंगाल। कंगाल मतलब दुनिया का सब कुछ अगर उसके पास है भी, तो भी उसमें स्वामित्व की भावना उसके पास नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत कुछ है इन श्लोकों में, जिन पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कुंती महारानी जी ने जो स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण की, जिस समय की वो द्वारिका के लिए लौट रहे थे, और उस समय भीगी हुई आंखों से भगवान के आगे वो नतमस्तक हो गई, और उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। वो बस भगवान के महत्व को अपने हृदय में भलीभांति महसूस करके और अपनी स्तुति उनके लिए गान करने लगी। बहुत ही सुंदर उन श्लोकों पर चर्चा की हमने जो कुंती जी ने भगवान के लिए कहे, जिनमें आप ये भी सुन रहे हैं कि कैसे भगवान जो हैं वो अकिंचनों के वित्त हैं, है ना, जो इस दुनिया के पैसे, इस दुनिया के धन पर नजर नहीं डालते और उसे अपना भी नहीं मानते। उनका जो अपनापन है वो भगवान में रहता है, ये भगवान ही मेरे अपने हैं और कुछ भी मेरा नहीं है, है ना। तो ये हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। तो भक्तों की जो गुण वृत्ति है, यानी कि विषय भोग की जो लालसा है, उनमें नहीं होती है। भगवान को जिसने चित्त दे दिया, क्या उसका दूसरी जगह ध्यान जा सकता है? कभी भी नहीं। भगवान शांत हैं, इसलिए अकिंचनों की कोई भी त्रुटि वो ग्रहण नहीं करते, कोई त्रुटि उनमें होती भी नहीं है। लेकिन जो बहिर्मुख है, बहिर्मुख, उनका भी भगवान दोष नहीं गिनते। क्यों? वो देखते ही नहीं कि इनमें दोष है कि गुण, क्योंकि भगवान क्या है? समदृष्टि। क्यों? क्योंकि वो आत्माराम है, स्वयं में रमण करते हैं, बाहर की तरफ नजर नहीं डालते। तो बहिर्मुख जो जीव हैं, वो भगवान की समदृष्टि के बारे में संदिग्ध रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण समदृष्टि हो। कभी तो वो किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी पर अनुग्रह करते हैं, किसी पर निग्रह करते हैं। यही लेकर के जो बहिर्मुख के जो लोग हैं ना, इसी बात पर तर्क करते हैं, कलह करते हैं, विचार करते हैं, मीमांसा करते हैं, ये सब करते हैं, इनका कोई अंत नहीं। मगर कुंती देवी जी क्या बोलती हैं? कहती हे गोविंद, मैं तो आपके अंदर कोई वैषम्य देख ही नहीं पा रही हूँ कि आप किसी के लिए भी बायस्ड हैं, कि आप भेदभाव करते हो, ऐसा मैंने देखा ही नहीं। दुर्योधन राजा बन गया और मेरे बच्चों को वन में भेज दिया गया, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का विनाश कर दिया गया, ये सब जो हुआ इसमें आपकी भी तो मर्जी थी। लेकिन ये सब भी देख करके प्रभु आपको विषम या निर्दयी बोलने की मेरी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, ब्रह्म रूप में समस्त जीवों के आप अंदर हैं और बाहर भी रहते हैं, और उनका पालन जैसा अच्छा लगता है, हाँ, जिस भाव से उनका पालन करना उचित है, जो चीज उनके लिए उचित है वही आप करते हैं। और हम जैसे अज्ञ जीव, यानी जिन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, आपकी महिमा का ज्ञान तो छोड़ दीजिए प्रभु, अपने बारे में भी तो ज्ञान कहाँ है? कहाँ है ये ज्ञान कि भगवान वही हमारे हैं, वो हमारे वित्त हैं, वो हमारे संपद हैं, जो कुछ हमारे जीवन में होता है अच्छा या बुरा, हाँ, उस पर हमें दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज फाइनली अच्छे के लिए ही होती है। क्यों? कब अच्छे के लिए होती है? तब अच्छे के लिए होती है जब वो भगवान की तरफ हमें मोड़ दे, जब भगवान के प्रति हमारे हृदय में उससे एक एहसास, एक सुंदर अनुभूति पैदा हो कि हाँ प्रभु जय ही विधि राखे राम ते ही विधि रही हो, है ना, ऐसा मैं करूंगा। यानी आप जो कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अच्छा या बुरा, बस उसे स्वीकार करने की समझ और दे देना, मैं स्वीकार कर सकूं, मैं देख सकूं कि ये आपकी इच्छा है, है ना। आपने दिया संतान, आपने दी तो संतान अगर ले ली तो भी आपकी इच्छा। जब आपने दिया तब तो हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं रोए कि आपने दिया, तो फिर ले लिया तो फिर रोना क्यों? तो इतनी ऊंची सोच हो जाती है जो भगवान की शरणागति ले लेते हैं, है ना। तो भगवान जो है वो क्या तत्व है, ये एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कृपा आश्रित होता है, चरणाश्रित होता है, और भगवान में जिसके मन, बुद्धि और वाणी लगी रहती है, भगवान में ही निवेशित रहती है, वो इस भगवत तत्व को भली भांति समझ पाता है, और वही व्यक्ति समझा भी सकता है भगवत कृपा से। तो हमने आज जो सुना वो हमारे अंदर रह जाए, उस पर हम विचार करें और देखें कि कुंती जी जिन पर इतने दुख आए, उन्होंने कभी भी उन दुखों को देखकर उफ नहीं की, कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया कि आप भी तो थे वहां पर, आप चाहते तो ये हो सकता था, वो हो सकता था, रक्षा हो सकती थी, इसकी रक्षा होती, ये होता, कोई दोष नहीं दिया, बस कहने लगी कि प्रभु आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते, ये हमारा दोष है। तो बहुत अच्छी तरह से कुंती महारानी ने भगवान को ये बताया और हमें भी ये बताया कि कैसे हमें भगवान के हर निर्णय में प्रसन्न रहना है। तो ऐसा हम कर पाए, इसी शुभकामना के साथ अब इजाजत लेती है आपसे प्रेम धारा। नमस्कार।
ललिता विशाखायादि चतुशाखी वृंद, ललिता विशाखा जतुशाखी वृंद।
हम पिछले कुछ हफ्तों से सुना रहे हैं कुंती महारानी द्वारा भगवान की महिमा को प्रदर्शित करते हुए, प्रकाशित करते हुए जो श्लोकों का गान किया गया है, उन श्लोकों पर आधारित कार्यक्रम हम आपके लिए ला रहे हैं। आज भी कुंती महारानी जी कुछ विशेष कह रही हैं भगवान के लिए। वो कह रही हैं कि प्रभु, आप जब नरलीला करते हैं ना, तो उस नरलीला को समझने की बुद्धि किसी में नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोग आपको पक्षपाती समझ लेते हैं, जबकि आपके लिए कोई भी अप्रिय नहीं है। सबके लिए आप बराबर अवसर प्रदान करते हैं ताकि सब लोग आपके तरफ आ सकें। और बहुत कुछ बता रही हैं कुंती महारानी, जिसे हम सुनते हैं इन श्लोकों के माध्यम से जो उन्होंने भगवान के लिए कहे हैं। ये श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय के 28वें और 29वां श्लोक। कुंती महारानी जी कह रही हैं, न वेद कश्चित् भगवंश चकीर्षितः तवहे मानस से निणाम विडम्बनम न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति कर्हिचिद् द्वेष्यस्य च यस्मिन् विश्वा मतिर् निणाम जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यंग निरीषु याधसु तदत्यंत विडम्बनम। अर्थात, हे भगवान, आपका कोई प्रिय या कोई अप्रिय नहीं, तथापि मुंह में अंधा जीव आपको पक्षपाती समझता है। इसीलिए आपके नरलीला का तत्व समझने का भला किसका सामर्थ्य है? हे विश्वात्मन, आप जन्म रहित होकर भी कभी पशु तो कभी मनुष्य तो कभी ऋषि तो कभी जलचर होकर जन्म ग्रहण करते हैं। आपका कोई कर्म नहीं, तथापि आप नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसलिए आप इस प्रकार से अनुकरण करते हैं उन लीलाओं का कि कोई भी आपको समझ नहीं पाता। तो बहुत सुंदर यहाँ पर बता रही हैं कुंती महारानी जी भगवान के बारे में, बता रही हैं कि प्रभु, आपके लिए कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है, कोई भी प्रिय अप्रिय नहीं है, है ना? भगवान के लिए सब समान है, इसीलिए उनका एक नाम है समदर्शी। भगवान कहते हैं, देखो, मेरा सबसे अच्छा भक्त भी वही है जो समदर्शी हो, क्योंकि पिता में जो गुण होते हैं, पिता चाहता है कि मेरे बच्चे में भी वही गुण हो, है ना? लेकिन फिर भी जैसे कि एक पिता के अगर चार बच्चे हों और चार बच्चों में से कोई एक बच्चा पिता का बहुत ध्यान रखता हो, वो अपना खुद कुछ खाए उससे पहले पिता को खिलाता हो, कहीं मार्केट में कुछ खरीदने जा रहा है तो मार्केट से वो अपने लिए चीजें ले रहा है तो पिता के लिए भी चीजें ले रहा है, पिता का विशेष ध्यान रखता है, तो हालांकि पिता के लिए चारों बच्चे समान हैं, लेकिन जो बच्चा पिता का बहुत ध्यान रखता है उसके प्रति पिता की ममता अधिक होगी ही। ऐसे ही भगवान कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यस्ति न प्रिया, कि मैं तो सबको समान समझता हूँ, सारे लोग मेरे लिए समान हैं, मेरे को किसी से भी द्वेष नहीं है और किसी से भी प्रियता नहीं है, किसी के प्रति भी राग नहीं है, अनुराग नहीं है, प्यार नहीं है और किसी से द्वेष भी नहीं है। कह तो दिया भगवान ने, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि लेकिन जो भक्त है ना मेरा, जिसने अपना पूरा जीवन मुझ पर न्यौछावर कर दिया, जिसने मेरी पूरी शरणागति ले ली, जो मेरे अलावा समस्त इच्छाओं से मुक्त हो गया, सिर्फ एक इच्छा है उसकी, मुझे पाने की, मेरा हो जाने की, मेरे लिए ही उसकी सारी इच्छाएं जन्मती हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है ना? वो प्रियता रहेगी। तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान के लिए कौरव और पांडव दोनों ही समान थे, क्योंकि दोनों ही तो आखिरकार जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, है ना? तो भगवान किसी से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि पांडव विशेष रूप से शरणागति लिए हुए थे भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान उनको अभय प्रदान किए, भगवान ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया, है ना? भगवान के वो प्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि शरणागति ले ली। क्यों? क्योंकि अपने बल पर अब भरोसा नहीं, प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप जिस हाल में रखेंगे हम उस हाल में रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु आप तो राजाधिराज के पद पर बैठे हैं और आपके होते हुए देखिए हम किस अवस्था में आ गए कि वन वन में मारे मारे फिर रहे हैं, वनचारी हो गए, है ना? तो हम तो मुसीबतों के मारे हैं और आप बड़े आराम से बैठे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसा नहीं कहा, कहा कि जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु हम आपके बन के रहेंगे, आप ही हमारे सब कुछ है, है ना। तो यहाँ इसीलिए जब इस प्रकार की गतिविधियों को हम देखते हैं भगवान की, कि भगवान देखिए फिर भगवान ने पांडवों का कितना हित किया, पांडवों के साथ रहे, तो क्या कौरवों का हित नहीं किया? कौरवों ने अगर कहा कि हमें आपकी नारायणी सेना चाहिए तो भगवान ने दे दी। तो भगवान ने कहा देखो भाई सारा दूध तो जो है वो ले गए, अब तुम्हारे पास छाछ है, अब तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, बस छाछ रह गई है, अर्जुन मुझे लोगे तो छाछ ही हाथ में आएगी, खट्टी छाछ। तो बोले नहीं प्रभु, आप है माखन चोर, माखन हमेशा आपके पास ही रहता है, आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ हमारे साथ है, हमें जीत हमें हार इसकी परवाह नहीं, हमें बस ये परवाह है कि आप कहाँ हैं, आप हमारे पास हैं, तो जो हार होगी वो भी आपके द्वारा स्वीकृत होगी, उसमें भी हमारी कोई भलाई होगी, है ना। तो ये जो भाव है ना, ये एक भक्त के ही हो सकते हैं, एक भक्त ही भगवान की लीलाओं के तत्व को समझता है, और बाकी लोगों के लिए ये तत्व समझना जरा मुश्किल है। और भी बहुत कुछ कहा है इस श्लोक में, जिस पर चर्चा करेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण कार्यक्रम। समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कुंती महारानी भगवान के लिए कह रहे हैं कि प्रभु आपके लिए कोई प्रिय नहीं अप्रिय नहीं, फिर भी जो मोहांध जीव है आपको पक्षपाती समझता है और आपके नर लीला को वो कभी समझ नहीं पाएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे भगवान के होते हुए महाभारत का युद्ध हो गया, हाँ कितने लोग मारे गए, भगवान रोक सकते थे। तो भगवान को समझना सबके बस की बात नहीं। और कुंती महारानी जी भी कह रही हैं, वो मानो आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बात कह रही हैं, कह रही हैं कि देखिए प्रभु आप तो विश्व की आत्मा हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि जन्म तो कर्म से बाध्य होकर के लेना पड़ता है, कर्म के फलों को भोगने के लिए लेना होता है, लेकिन फिर भी प्रभु आप कभी पशु कभी मनुष्य कभी ऋषि बनते हैं कभी जलचर होते हैं, ये आप कैसे कर लेते हैं, आपका तो कोई कर्म नहीं फिर भी इतनी लीला करते हैं। जैसे कि एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका में लीला कर रहे थे, है ना, द्वारिका में जब लीला कर रहे थे तो नारद जी ने वहां जाकर देखा तो क्या पाया, देखा कि भगवान श्री कृष्ण संध्या वंदन आदि कर रहे हैं। ये देख करके किसी के भी मन में ये बात आएगी कि अरे भगवान होकर के भी ये किसकी उपासना कर रहे हैं, जरूर ये मनुष्य ही होंगे, है ना। और ऐसे ही जब वराह रूप भगवान ने धारण किया तो इसी तरीके से भगवान पृथ्वी को सूंघते सूंघते जा रहे थे जैसे जो है वराह सूंघता है। बिल्कुल उनको देखकर लगेगा ही कि ये पशु है और कुछ हो नहीं सकते, है ना। तो भगवान ऐसा अपूर्व अनुकरण करते हैं, ऐसा अपूर्व अनुकरण कि लगता है कि ये तो जगत का जीव ही है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अवजानन्ति मा मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानंतम मम भूत महेश्वरम। ये भगवान को कहना पड़ा, है ना, कि बहिर्मुख व्यक्ति जो है वो मेरी लीलाओं को ये सब लीला को सुनकर देखकर समझ नहीं पाएगा, है ना, वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं समदृष्टि हूँ, कभी नहीं समझ पाएगा। कोई कहेगा अरे वो तो निराकार है, कोई कहेगा अरे नहीं वो तो जो है श्रीमूर्ति है उनकी, है ना, और कोई कहेगा नहीं नहीं हमारी तरह पांच तत्वों से तो बने हैं। बस इस तरीके से जो है लोग आपस में तर्क वितर्क करते रहेंगे, लेकिन भगवान को अप्राकृत बोलकर समझना, ये समझ लीजिए ये बहिर्मुख व्यक्ति नहीं कर सकते। ये तो जो भक्त है ना, भक्त, और वो भी कैसे, वैसे भक्त जिन पर भगवान की कृपा होगी और भगवान जिनको समझाएंगे बस वही समझ पाएंगे, नहीं तो दोष दृष्टि और तत्व कलह मात्र ही जो है व्यक्ति उसी का अवलंबन लेगा। यानी कि उसके अंदर भगवान के प्रति दोष दृष्टि होती है या फिर तत्व के ऊपर लोग लड़ाइयां करते रह जाते हैं। तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से बता रही हैं कुंती महारानी की, देखो प्रभु ये जो बड़ी विडंबना है ये, आपको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप कभी कूर्म अवतार लेते हैं, कभी आप मत्स्य अवतार ले लेते हैं, है ना, कभी आप वराह अवतार ले लेते हैं, पशु बन जाते हैं, है ना, कभी आप मनुष्य बन जाते हैं, कपिल जी हो गए, कपिल देव जी के रूप में भगवान आए देवहूति जी से, कभी ऋषि बन जाते प्रभु वामन देव के रूप में आप आए, है ना, कभी जलचर हो जाते हैं मत्स्य अवतार हो जाता है, तो ये क्या, और आते हैं तो प्रभु लीला भी उसी की तरह करने लगते हैं, मनुष्य होते तो मनुष्य की तरह ऐसी लीला होती है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि ये भगवत तत्व है। एक क्षुद्र इंसान क्या सोचेगा। ब्रह्मा जी तक भी मोहित हो जाते हैं जब भगवान को अपने सखाओं के साथ खेलते हुए देखते हैं, तो वो भी विमोहित होते हैं कि ये कैसे खेल रहे हैं, ये किस प्रकार से अपने सखाओं का उच्छिष्ट जूठा अपने मुंह में डाल रहे हैं। अगर ये परब्रह्म है तो इन्हें इस तरह के कर्म करने की क्या आवश्यकता, इनके पास तो सब कुछ है, ये तो दाता है, दाता शिरोमणि है। तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें भी समझ नहीं आता। और कभी जब ऋषि के रूप में आते हैं भगवान, तो भी एकदम लगता है कि जैसे बड़े अज्ञान में ढके हुए हैं। जैसे कि नारद जी जो है वो भी ऋषि है और व्यास देव के रूप में भगवान स्वयं आए, लेकिन व्यास देव के रूप में जब तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं की थी और वेदों को लिखित रूप दे दिया था, तब वो बहुत ज्यादा उदास थे, बहुत उदास थे कि मैं जो है संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, मैंने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ बताया पारमार्थिक तत्व के बारे में, पर मैं उदास क्यों हूँ, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही। वहीं पर फिर भगवान ही नारद जी के रूप में बता रहे हैं व्यास देव जी को कि तुमने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया इसलिए तुम उदास हो, है ना। तो देख के लगेगा हाँ जरूर कहीं चूक रह गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वयं दिखा रहे हैं कि भगवान की महिमा का गायन ना करके, भगवान की महिमा को ना समझ के जीव हमेशा असंतुष्ट रहेगा, वो कभी भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, है ना। ये जो है तत्व है। तो ऐसे भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे अनेक अनेक तत्व हैं, पर इन्हें समझते हैं सिर्फ भगवान के भक्त ही। और आज नहीं तो कल कभी ना कभी इसी जन्म में हम भी भगवान के इन समस्त तत्वों को समझ पाए, बस ऐसी शुभकामना है मेरी आपके लिए और मेरे लिए भी। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए प्रेम धारा को, नमस्कार।
ललिता विशाखाया दी जप सखी वृंद, ललिता विशाखाया दी जप सखी वृंद, आज्ञाए करी
देखिए, हमारे मनोरंजन के लिए हम कितने ही सामान को एकत्र कर लेते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं उन सामान से, है ना। आधुनिक विज्ञान ने हमें बहुत कुछ चीजें दी हैं जिनसे हम अपना मनोरंजन करते रहते हैं, ठीक है ना। और भगवान क्या करते हैं, भगवान जानते हैं कि भक्तों का जो मनोरंजन है ना, वो आधुनिक चीजों से कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की तरफ ही देखते रहते हैं हर चीज के लिए। तो भगवान भक्तों के मनोरंजन के लिए अनेक अनेक लीलाएं करते हैं और भक्त उन्हीं लीलाओं का रस आस्वादन करके हमेशा आनंद के समुद्र में तैरते रहते हैं, है ना। और यही बता रही हैं कुंती महारानी आज के श्लोक के द्वारा। कुंती महारानी भगवान की महिमा, भगवान के तत्व को उजागर कर रही हैं अपने स्तुति के द्वारा। और हम अगली स्तुति ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक से। श्लोक ध्यान से सुनिए। गोप्या ददे त्वयी कृतागसी दाम तावद्याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रुहु निनिया भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद्विभेति। अर्थात हे भगवान, जिनके नाम से भय भी भय पाकर के भाग जाता है, ठीक वही आपने दही का मटका तोड़ा और अपराधी की तरह यशोदा माँ तब आपको बांधने के लिए रस्सी लेकर आई और तब आपने काजल से मिश्रित आंसुओं से भरे हुए अपने नयनों को नीचे की तरफ अवस्थान किया। और इस तरह की जब आपकी अवस्था मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तो कितनी बड़ी बात है, देखिए भगवान जो कि सृष्टि करते हैं एक इशारे में ही सृष्टि हो जाती है, भगवान जो इच्छा करते हैं संहार का संहार हो जाता है इच्छा करते ही, वो भगवान जिनका नाम लेते हैं तो संसार रूपी भय से हम दूर हो जाते हैं। संसार का भय हमें नहीं सताता है, मरने का भय नहीं सताता है, हमें पता है कि भगवान का नाम ले लिया, अब भगवान की शरणागति ले ली, अब तो भगवान के अंडर में है सब कुछ, अब जो होगा सब भगवान की इच्छा से होगा, अब अपना कोई जोर नहीं है, है ना। तो जिनका नाम से नाम लिया और भय भाग गया, वही आप प्रभु जब दही का मटका तोड़ दिए तब आपको अपराधी करार दे दिया गया कि आप तो अपराधी हो गए, और तब आपको जो है बांधने के लिए आपकी मैया यशोदा रस्सी लेके आई, और तब आप रोने लगे और रोते रोते जो है आपके जो काजल है आंखों का वो आपके गाल पर आते हुए आंसुओं के साथ आपके गले तक आ गया, ऐसी हिचकियां आपको उठने लगी, रोते रोते हिचकी बंद गई, आप सच में भयभीत हो गए, ये क्या है प्रभु ये क्या है। तो देखिए जो भगवान है ना, वो मनुष्य पशु पक्षी आदि जिस रूप में भी लीला क्यों ना करें, पर वो उस रूप का जो अनुकरण करते हैं वो बड़ा आश्चर्य है ना, बहुत ही। और मजे की बात है कि ये अनुकरण मात्र अनुकरण नहीं होता, इसकी एक विशेषता भी है। विशेषता यह है कि इस अनुकरण में संपूर्ण रूप से भक्त अधीनता विराजमान है, यानी कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अपनी इच्छा से भगवान अनुकरण नहीं कर रहे हैं, ऐसा अनुकरण कर रहे हैं कि जिस भाव से भक्तों का आनंद का वर्धन हो जाए, बस उसी भाव का अनुकरण करते हैं भगवान। और इसमें एक विशेषता और भी है, और विशेषता यह है कि भगवान अपने स्वरूप की स्मृति एक बार में ही भूल जाते हैं और भक्तों के अधीन होकर भक्तों की इच्छाओं का अनुकरण करते हैं, भक्तों की इच्छा के अनुसार। भगवान का स्वरूप दिव्य है, भगवान अपने एक ही स्वरूप से जहाँ अपने धाम में लीला करते हैं वहीं पर ही भगवान हमारे सामने यहाँ इस प्रकट धाम में भी लीला कर चुके हैं, यहाँ जो है कण कण में अचिंत शक्ति से विराजमान है, हमारे हृदय तक में विराजमान है एक भगवान, है ना। जैसे कि एक सूर्य अगर करोड़ों करोड़ों शीशों पर आईनों पर उसकी छवि पड़े तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन करोड़ों आईनों के जरिए वो हर जगह विद्यमान है ना। ऐसे ही भगवान की बात है, लेकिन ऐसा जो स्वरूप है भगवान का जो परम आनंद से भरपूर है, जो कि भय रहित है, भय जिसके अधीन है, जो भव भयहारी है, जो वैसे भी भयहारी है, ऐसे भगवान अपने स्वरूप की स्मृति को भूल जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और भक्तों के अधीन हो जाते हैं। क्या बात है। देखिए अगर भगवान को ये याद रहे कि मैं भगवान हूँ तब अनुकरण का माधुर्य रहेगा नहीं। जो लीला का अनुकरण कर रहे हैं, जिस लीला में है, नर लीला में ही है मान लीजिए, तो उसका माधुर्य कहाँ रहेगा अगर याद रहे कि मैं भगवान हूँ। तो भक्तों के प्रेम के बल से केवल मात्र भक्तों के प्रेमानुरूप स्वरूप का अभिमान रख करके भगवान जो है अपनी अचिंत शक्ति समूह को भक्त के प्रेम सिंधु के अतल के तल में डुबो देते हैं। प्रेम सिंधु कैसा है, जो अतल है, और उस अतल प्रेम सिंधु में, भक्तों के प्रेम सिंधु में भगवान अपने स्वरूप को मान लो डुबो देते हैं, फेंक देते हैं और भक्तों के अधीन होकर के मधुर लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं। और इसी का जो उदाहरण है वो वृंदावन और ब्रजवासी गोप गोपियों के निकट है, और अन्यत्र जो है ये उदाहरण नहीं मिलता। ब्रजवासियों के निकट भगवान ने जो है दिखाया अपना पूर्णतया पूर्णतया भक्त भाव, यानी भक्तों की अधीनता। इसीलिए जो है अब कुंती देवी को भगवान की ये लीला जो है ये स्फुरित हो रही है, और वो इस लीला के बारे में भगवान के आगे चर्चा कर रही है और आश्चर्यचकित हो रही है। और भी बहुत कुछ है इस श्लोक में जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण,
आप
साधु में प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान नर लीला करते हैं या पशु पक्षी कैसी भी लीला करते हैं तो पूर्ण रूप से उस भाव का अनुकरण करने लगते हैं। और आपको बताया गया कि ये जो अनुकरण है वो भक्तों की इच्छा के अनुसार करते हैं, भक्तों के मनोरंजन के लिए करते हैं, आपको यह भी बताया गया कि ऐसे में भक्त अधीनता को स्वीकार करके भगवान अपने स्वरूप को उनके प्रेम सिंधु की अतल गहराइयों में खो देते हैं, डुबो देते हैं, है ना। और ब्रजवासियों के सामने जिस प्रकार की भगवान की अधीनता रहती है, भक्त वश्यता रहती है, वैसी भक्त वश्यता और कहीं भी इतनी ज्यादा नहीं रहती भगवान की। तो यही सोच रही है कुंती महारानी जी, क्योंकि उन्होंने साक्षात ये लीला देखी नहीं, पर जो कुछ सुना, जो भाव उनको समझ में आया, वो कहती है कि मैं तो इसी से मुग्ध हो गई। जब वृंदावन में ब्रजराज गृहिणी यशोदा की दही का मटका आपने तोड़ दिया तो आप अपराधी हो गए, और तब यशोदा जी आपको शासन करने के लिए बाएं हाथ से उन्होंने आपका दाएं हाथ पकड़ लिया, अपने दाहिने हाथ में रस्सी लेकर के उन्होंने कहा, अरे दुष्ट बालक, आज मैं तुमने जो कर्म किया है ना, उसका अच्छा दंड दूंगी। बस ये सुनते ही आप तो भय के मारे एकदम जड़ हो गए, दो आंखों से आंसू बहने लगे, और उसमें काजल ही काजल जो है, वो काजल रंजित नयन, वो काजल से मिश्रित जो अश्रु जल है वो बहने लगा। और आप जो है अपने नैनों को, आपके जो दो नैन है वो अश्रुओं से ऐसे भरे रहे कि वो धारावत प्रवाहित होने लगे आपके दो गालों से, हा? और आपके वक्ष देश को, यानी आपके वक्ष को सिक्त करने लगे, गीला करने लगे, भिगोने लगे। कैसी भक्ताधीनता है प्रभु आपकी, जिसका नाम सुनते ही स्वयं भय भी भय से भाग जाता है। वो गोपियों के भय से भीत होकर के नयन का जो जल है वो प्रवाहित कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और मन ही मन सोच रहे हैं कि ना जाने आज मेरी किस्मत में क्या है। जब प्रलय काल में अनंत कोटि ब्रह्मांड आप ध्वंस कर देते हैं, तब भी आपको कोई नहीं कुछ बोल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन वही आप आज स्वयं ब्रज में आए हैं, और ब्रज में आके आपने क्या तोड़ा, बस एक मिट्टी का मटका, और आप अपराधी हो गए, और माँ के दंड से इतने डर गए। धन्य है यशोदा जी का प्रेम और आपकी प्रेम वश्यता। तो देखिए, कुंती देवी जी है ना, वो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित वात्सल्य प्रेमवती हैं, और माँ यशोदा वो शुद्ध वात्सल्य प्रेम सिंधु हैं। श्री कृष्ण की कृपा से जब ब्रज का वात्सल्य जब उनके अंदर स्फुरित हुआ, उसी से वो मुग्ध हो गई, है ना, मुग्ध हो गई। और ये जो श्लोक है, वस्तुतः भक्त की इच्छा और भाव के अनुगत्य भाव में श्री कृष्ण का अपने ऐश्वर्य को भूलकर बाल्य लीला अभिनिवेश में जो उन्होंने आस्वादन किया है ना, वो जो है इंगित कर रहा है। तो जो कुंती महारानी जी कह रही हैं कि प्रभु, आपके इस अवस्था को देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। देखिए, इस अवस्था को देख करके और इस अवस्था में भी जो यशोदा जी हैं, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुतों ने बताया कि आपका ये जो शिशु है वो भगवान है। हाँ, गर्गाचार्य जी ने बताया कि इनमें नारायण के समस्त गुण होंगे, इनमें ऐसी शक्ति है, यानी ईश्वरीय शक्ति है। लेकिन बावजूद इसके यशोदा मैया का जो प्रेम है वो इतना शुद्ध प्रेम है कि वो श्री कृष्ण को अपना बालक ही समझती रही, और वो ये सह भी नहीं पाई कि कोई ये कहे कि इनके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, क्योंकि सोचने लगी कि अरे, अगर ईश्वरीय शक्ति होती तो मुझसे खाना क्यों मांगता, मेरा आंचल पकड़ पकड़ करके मेरा दुग्ध पान करने की इच्छा क्यों व्यक्त करता रहता बार बार, हा? इसे मैं संभालती हूँ तो संभालता है, मैं सुलाती हूँ तो सोता है। तो इस तरह जो भगवान बाल लीला का अनुकरण करते हैं, ऐसे भगवान जो कि 6 दिन के थे और पूतना जैसी भयंकर राक्षसी उन्हें मारने आई, तो भगवान ने उसके प्राण ही निकाल लिए। 6 दिन का बच्चा जो हिल भी नहीं सकता, वो देखिए क्या कर बैठा। तो भगवान ने अपनी भगवत्ता जगह जगह दिखाई, लेकिन फिर भी भक्तों का जो प्रेम है ना, शुद्ध प्रेम, उसके आगे भगवान का जो ऐश्वर्य है वो कार्य नहीं कर पाया। तो बहुत ही सुंदर बात कही आज कुंती महारानी जी ने, और भगवान की ये जो भक्त अधीनता का जो भाव है, ये हमारे अंदर भी संचारित हो, ताकि हम भी भगवान की भक्त वश्यता, इस गुण को बार बार याद करके उनके प्रति दृढ़ भाव से अभिमुख हो सकें, उनके प्रति हम दृढ़ भाव से भक्ति कर सकें। बस यही शुभकामना है मेरी आपके लिए और मेरे लिए भी। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए प्रेम धारा को। नमस्कार।
श्याम गौरी अंगे दिवो चंदन गंधा। मेरी वो मुख चंद्र चामर ढुलाबो कबे मेरी वो मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण
हम श्री कुंती महारानी जी ने जो सुंदर सुंदर स्तुतियां की हैं भगवान श्री कृष्ण की और उनका यशोगान किया है, वही जो स्तुतियां हैं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इस पर विशेष कार्यक्रम हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सब भक्ति करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं। तो भक्त बनने के लिए हमें एक आदर्श जरूर अपने सामने रखना होगा। भक्ति करने के लिए एक आदर्श भक्त का चरित्र, और उस आदर्श भक्त ने कैसे भगवान की स्तुति की, पूजा की, कैसे भगवान के उपदेशों पर उसने अपना आचरण किया, ये सब जो है हमें अच्छी तरह से समझना होगा। कुंती जी बहुत प्यारी भक्त हैं भगवान की, भगवान पर उन्होंने पूरी तरह से भरोसा दिखाया, भगवान की पूर्णतया शरणागत भक्त रही हैं कुंती महारानी जी। और जब भगवान द्वारिका जा रहे थे उनके उस राज्य को छोड़ करके, तब कुंती जी बहुत बहुत ही ज्यादा विचलित हो उठी और वो रोकना चाहती थी, क्योंकि भक्त हमेशा चाहता है कि भगवान जो है उसके सामने रहे, उसके आसपास रहे, और इसीलिए वो बहुत विरह में भी क्रंदन करता है भगवान के लिए। और अगर भगवान मिलने के बाद अगर जाने लगे, खासतौर से ऐसे भगवान जो कि अपने भक्त के साथ ही रहते हैं, आसपास रहते हैं, बार बार आ जाते हैं और फिर वो जा रहे हैं काफी दिन बाद, तो फिर क्या हालत होगी एक प्यारे भक्त की। तो ऐसे ही भावों को उजागर कर रही हैं महारानी कुंती। तो आइए हम आज का श्लोक लेते हैं जो कुंती महारानी जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा। कह रही हैं, केची धाहु रजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्तये यदो प्रिय स्यान ववाये मलयस्येव चंदनम। अर्थात कह रही हैं कि हे भगवान, कोई कोई विज्ञ जो है जानकार वो बोलता है कि मलय पर्वत के यश विस्तार के लिए जिस प्रकार वहाँ चंदन का जन्म होता है, इसी प्रकार आप भी युधिष्ठर आदि के यश विस्तार के लिए अपने भक्त यदु के कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। और ये भी कहते हैं कि कोई कहता है कि वसुदेव और देवकी जो पूर्व जन्म में सुतपा और पिशनी के रूप में तपस्या करके आपके लिए प्रार्थना किए थे कि आप जो हैं उनके संतान के रूप में आए, इसीलिए आप जगत के हित और असुर के वध के लिए आविर्भूत हुए हैं। तो कुंती महारानी जी जो है भगवान को जब अपने सामने देखती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार देखा, इसी बार देखा, कई बार देखा, बार बार देखा, जब जब पांडवों पर मुसीबतें आई, और यूं भी पांडवों के साथ भगवान बहुत दिनों तक रहे, उनका उठना बैठना था, सख्य भाव था, है ना। और जो है कुंती महारानी जी के तो रिश्ते में भी लगते थे वो भतीजे, तो इस तरीके से एक संबंध को लेकर के जो है कुंती महारानी जी ने बार बार दर्शन किए श्री कृष्ण के, लेकिन फिर भी जो श्री कृष्ण को जब वो सोचने लगती हैं, उनके बारे में जब वो विचार करने लगती हैं, तो हतप्रभ हो जाती हैं। कहती हैं कि कितनी नॉर्मल बात है, ये आते हैं मेरे पास, ये हमें दर्शन देते हैं, हमारे दुखों से हमारी रक्षा करते हैं, कितने दुख हम पर पड़े, रक्षा की, महाभारत का एकदम भयंकर युद्ध हुआ, और जो विपक्षी जो सेना थी वहां पर एक से एक धुरंधर योद्धा थे जिन्होंने युद्ध कला सिखाई थी पांडवों को, ऐसे द्रोणाचार्य जी थे, और भी अनेक अनेक शूरवीर थे, उन शूरवीरों के बीच में से पांडवों का बच आना तकरीबन असंभव था, लेकिन चूंकि भगवान उनके साथ थे इसलिए ये संभव हो पाया, है ना, क्योंकि भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। तो जब भगवान को सामने देखते हैं बार बार, तो लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे सखा हैं, हमारे पुत्र हैं, लेकिन जब भगवान के अति मानवीय कार्यों को देखती हैं, और जब देखती हैं कि कैसे संरक्षण प्रदान किया भाई, कैसे संरक्षण प्रदान किया, कैसे दुर्वासा मुनि जी चले गए थे वन में जब पांडव वनवास कर रहे थे और वहां जाकर कह दिया था कि मेरे और मेरे शिष्यों के लिए शिष्य हजारों की संख्या में थे, हाँ तुरंत भोजन तैयार करो, हम अभी स्नान करके आते हैं। और सब जानते थे कि दुर्वासा मुनि जो है श्राप देंगे तो फिर पूरा वंश जो है वो नाश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, बिना लड़े ही लड़ाई हम हार जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। तो घबरा गए थे, लेकिन फिर जब भगवान को याद किया तो भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित होकर के और फिर उन्होंने रक्षा की पांडवों की। कैसे समस्त जो ऋषि मुनि थे और दुर्वासा मुनि थे उनके पेट अपने आप ही भर गए। भगवान ने शाक का एक हिस्सा खाया, एक छोटा सा शाक का टुकड़ा लगा हुआ था उस अक्षय पात्र में जो कि द्रौपदी जी के पास था, क्योंकि द्रौपदी जी को वरदान था जब तक वो नहीं खाएंगी तब तक वो चाहे तो पूरे संसार को खिला सकती हैं, उसमें से कभी भी अन्न समाप्त नहीं होगा, खाना समाप्त नहीं होगा। और जब उन्होंने खा लिया तो फिर भोजन वहां पर उत्पन्न नहीं होगा, उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी शाक का एक टुकड़ा लगा था और जब भगवान ने उसे पाया तो सबके पेट भर गए। इससे ये भी साबित होता है कि अगर भगवान को भक्त संतुष्ट कर दे तो किसी और को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं रह जाती, अलग से संतुष्ट करें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वयं ही समस्त आत्माएं, समस्त देवी देवता, सब कुछ जो भी प्राणी है, चर अचर स्थावर जंगम, सब संतुष्ट हो जाते हैं। और तब सबके पेट भर गए और सबके सब जो है वहां से भाग खड़े हुए और इस तरह से उनकी लाज बच पाई। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के जो अति मानवीय कार्य है ना, उनसे बहुत ज्यादा हतप्रभ हैं कुंती जी और बार बार इसी निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं कि हाँ ये स्वयं भगवान हैं, भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकते। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर बात पर, जो कुंती जी कह रही हैं, बहुत ही सुंदर स्तुति का गायन कर रही हैं कुंती जी भगवान के लिए, भगवान का यशवर्धन कर रही हैं। उन्होंने कहा अभी ही कि प्रभु, कोई कोई कहते हैं कि आप इस प्रकार से जन्म लेते हैं जैसे कि मलय पर्वत में चंदन मलय पर्वत का यश विस्तार करने के लिए लेता है, ऐसे ही आपने युधिष्ठिर महाराज का यश विस्तार करने के लिए अपने भक्त यदुओं के कुल में जन्म ग्रहण किया है, है ना? तो वो जो अजन्मा है वो जन्म ग्रहण करता है क्यों? कृपा करने के लिए, है भक्तों पर कृपा करने के लिए। जैसे कि मलय पर्वत का अपने से कोई यश नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन चंदन के कारण मलय पर्वत को सब जानते हैं कि चंदन उसी पर्वत में होता है, तो सब कहेंगे अरे भाई हमें वही वाला चंदन लाना। कौन सा? वही मलय चंदन, मलयज यानी जो मलय पर्वत में होता है वो चंदन। उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, इतनी सुंदर सुगंध होती है उस चंदन की कि क्या बताएं। तो वो जो चंदन है उसकी सुगंध से ही मलय पर्वत का यश विस्तार हो जाता है। ऐसे ही यहाँ बताया कि आप जो है अपने भक्तों के यश विस्तार के लिए अपने भक्तों के कुल में ही जन्म ग्रहण करते हैं प्रभु, है ना? याद रखिए भगवान जो भी लीला करते हैं, लीलाधारी हैं भगवान, लीला पुरुषोत्तम हैं गोविंद, और जब भी वो लीला करना चाहते हैं तो वो किस लिए करते हैं? भक्तों के मनोरंजन के लिए, है ना? भक्तों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और पांडवों के साथ जो उन्होंने की लीलाएं उसमें उन्होंने दिखाया कि शरणागत भक्तों का कभी भी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हो सकता, उनकी हानि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि पांडवों की परीक्षा नहीं ली गई, जहां भगवान उनकी रक्षा करते थे वहीं परीक्षा भी होती थी कि कहीं जो इनका विश्वास मुझमें है वो डगमगाया तो नहीं। जब द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी थी अश्वत्थामा ने तो उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ नहीं कहा कि प्रभु आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया, आप बचा सकते थे, आप तो भगवान हैं, कुछ नहीं कहा, है ना? एक बार भी कुछ नहीं बोले। और तो और अश्वत्थामा को भी माफ कर दिया, उसका भी बदला नहीं लिया, उसको भी मारा नहीं, उसका भी वध नहीं किया, है ना? तो भक्तों की पहचान होती है कि वो क्षमाशील होते हैं। तो भगवान ये देखने के लिए और ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो पांडवों पर कितनी मुसीबतें आई, और उन मुसीबतों में बेशक मैंने सहायता की, परंतु अनेक अनेक परीक्षाएं भी हुई, अनेक अनेक,
इसमें कोई व्यक्ति भी घबरा सकता था, कोई भी। सुभद्रा जी, उनकी जो बहन थी सुभद्रा जी श्री कृष्ण की, उनका जो पुत्र थे अभिमन्यु जी, उनके पुत्र की हत्या हो गई, पुत्र को मार दिया विपक्षी सेनाओं ने, कौरवों ने मार दिया, हाँ चारों तरफ से घेर के। कहा जा सकता था भाई तुम तो मामा थे उनके, तुम उनकी रक्षा करते, लेकिन भगवान, भगवान के लिए कोई भी ना तो प्रिय है ना अप्रिय है। किसी ने भी भगवान की तरफ उंगली नहीं उठाई, सबने कहा कि जो जिसका प्रारब्ध था उसको वो मिला प्रभु, लेकिन फिर भी आपने हमारी हमेशा सहायता की। और इसीलिए बोल रही हैं यहाँ पर कुंती महारानी जी, उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं है, बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है, उल्टा वो भगवान की भगवत्ता को प्रणाम कर रही है बार बार और कह रही है कि आपने जो ये जो युधिष्ठिर महाराज हैं, युधिष्ठिर जी सत्यवादी थे, धर्म पर चलने वाले थे और किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं करते थे, न्यायशील राजा थे, तो उनका यश कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा ना कि उनके साथ भगवान थे, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो किसी के प्रति हिंसक नहीं होता है, जो न्यायप्रिय होता है, जो सहनशील होता है, अकृत द्रोह होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, जो किसी को शत्रु नहीं समझता है, ऐसा जो व्यक्ति है भगवान हमेशा हमेशा उसे अपना प्रिय मानते हैं। भक्तों का ये लक्षण होता है, साधुओं का ये लक्षण होता है, वो सब कुछ सह लेते हैं। नहीं तो जब उनको वनवास में भेजा था दुर्योधन ने, जब सजा दी थी, तभी कुछ ना कुछ हो सकता था, तभी वो उसका प्रतिवाद कर सकते थे, वो बोल सकते थे तुमने धोखे से हमें हराया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब में हरि कृपा मान करके उन्होंने जो है सारी परिस्थितियों में समझौता किया और उसका जो परिणाम बड़ा सुंदर रहा। क्या भगवान बारंबार बारंबार उनकी खैर खबर लेने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए, समाचार लेने के लिए उन तक आते रहे और उनकी सहायता करते रहे। तो और भी बहुत सुंदर स्तुतियां की हैं कुंती महारानी जी ने, जिन पर हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए कार्यक्रम समर्पण, फिलहाल दीजिए इजाजत प्रेमधारा को, नमस्कार।
प्राण मुरा जुगरा किशोर।